नाम और ऐसे तो और भी करते हैं जो बातें हम बताएंगे। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम है प्रभु प्रेम की अमृत धारा उंगली। आप सभी उंगली करते हैं, सभी आप उंगली पढ़ते हैं, पकाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, एक साकार उंगली कोई भी, तो उंगली तो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं। परंतु जैसे सुबह की क्लास में भी कहा था, उंगली एक एक वाक्य है बहुत गहराई छिपी है, और जब तक हम वो गहराई नहीं समझते, क्योंकि जो चीज हमको दूसरों को समझाना है वो हम पहले खुद अच्छे से समझ लें। अब एक है कि हम मुरली जो पढ़ते हैं वो एक ढंग से पढ़ते हैं रोज, और कई समय से उसी ढंग से सेंटरों पर सुना रहे हैं, तो क्या हमारा जो अप्रोच है मुरली की तरफ, क्या उसमें हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कुछ नवीनता ला सकते हैं, इसकी हम पूरी चर्चा आज करेंगे। हमारे पास दो प्रकार की उंगलियां हैं, साकार उंगली एक अव्यक्त उंगली। साकार उंगली में महावाक्य है, प्रश्न है, उत्तर है, गीत है, सारी उंगली है, यात्रा है, धारणा के लिए सार है, वरदान है, वरदान का विश्लेषण है, और तो इतनी सारी चीजें साकार उंगली। तो आज हम, वैसे तो हमने लगभग 40 अलग अलग मेथड्स, टेक्निक्स, विधि बनाई है जिससे उंगली पढ़ी जाए, समझी जाए, या अध्ययन किया जाए, या उसका मंथन किया जाए। उस 40 में से हम कुछ आज लेंगे, जो कि आपको केवल आपके लिए नहीं, आपको अपने स्टूडेंट्स को सिखानी है। वो सारी 40 टेक्निक्स, 40 की 40 तो हम नहीं लेंगे, कुछ कुछ उसमें से लेंगे। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं कि जो हमको, ये जो हमारा अप्रोच है इस उंगली की तरफ, जो हमारा दृष्टिकोण है, जिस ढंग से हम पढ़ रहे हैं, या आप तो पढ़ लेते हो और आप समझ भी लेते, पर आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं वो कितना इसको समझ पा रहे, कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका उंगली रखा क्लास में, आए डायरी खोली, महावाक्य लिखे, प्रश्न लिखा, डायरी बंद रख दी बाजू में, उसके बाद में बीच में थोड़ी सी नींद, जब पीठे पीठे जागरूक होता है तब थोड़ा सा जागरण होता है, जागरण आने के बाद में फिर धारणा के लिए मुख्य सार 1-2 लिखा, वरदान लिखा, स्लोगन लिखा, डायरी बंद। अब डायरी सीधा कल खुलेगी, सीधा कल। उसमें से कोई कोई सेंटर पर पहले प्रश्न पूछती है, तो वो मतलब जिसको जिसको याद है हमने देखा, तो अपना एक कोई वाक्य याद रखते हैं, बस उतना हो गया कि काम पूरा हो गया। ये इसको हम कहते हैं, ये आत्मा अच्छी है, ज्ञान में चलती है। हमारी ज्ञान में चलने की जो परिभाषा है वो ये है कि वो मुरली क्लास में आती है, रेगुलर आती है, ये इस तरह से। हमें अभी अपने स्टूडेंट्स को, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ ऐसी बातें बतानी है ताकि वो इस मुरली का, जैसे आपने अपने जीवन में कई बार गहराई से अध्ययन किया है तभी तो जाके आज सुना पाते हैं, शुरुआत के दिनों में सबने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, एक एक वाक्य को बहुत सारी चीजें समझने के लिए, तो अभी भी हमको कुछ ऐसी नई बातें इसमें सीखनी है कि जो हम अपने स्टूडेंट्स को सीखना है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं ऐसी मेथड्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने कहा कुछ हमने यहाँ लिख के भी लाई है, जो हमने अपने संगठन में उधर मधुबन में जो हमने विलय के बाद एक संगठन है केवल पुरुषार्थियों का, उसमें ये सारी बनाई है। तो सबसे पहली मेथड हम जैसा इसमें क्रम है उस तरह से भी जाएंगे, जो आपके ज्यादा काम आएंगे 40 में से उतनी हम निकालेंगे। सबसे पहली मेथड है कॉन्ट्रास्ट मेथड। कॉन्ट्रास्ट अर्थात तुलना। अब आपको इस मुरली से बाबा की जो भी मुरलियां हैं उसमें कॉन्ट्रास्ट करते हैं। जैसे आज की जो ऑब्जेक्ट वाणी इसमें कुमारों से मुलाकात में कॉन्ट्रास्ट है, विनाशी साथी रूहानी साथी, कुछ बातें इसमें दी है। तो आप अपने स्टूडेंट को होमवर्क दे सकते हैं कि 10 पॉइंट्स निकाल लिया है। कॉन्ट्रास्ट क्या है कि एक है जिस्मानी साथी, एक है रूहानी साथी। तो आप इसमें चिंतन कर सकते हैं, या तो खुद ही पहले चिंतन करें, बाद में क्लास की बात स्टूडेंट को सिखाना, बाद में स्टूडेंट्स को भी छोड़ देते हैं, पहले हम कैसे चिंतन करें। जैसे हमने ये पढ़ा कुमारों से मुलाकात पार्टी नंबर सेकंड पार्ट टू, इसमें बाबा ने चर्चा की है कि रूहानी साथी कैसा होता है, विनाशी साथी कैसा होता है, यह हमको सबको पता है। हम इस पर अपना मंथन कर सकते हैं, किस तरह से मंथन करेंगे। संसार के जो साथी है अल्पकाल के, धोखा देने वाले हैं, सदा साथ न रहने वाले हैं, एवर अवेलेबल नहीं है, एवर रेडी नहीं है, बहुत सारी चीजें हम ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ये हो गया एक कॉन्ट्रास्ट। दूसरा कुछ कॉन्ट्रास्ट होता है ज्ञान और भक्ति। ठीक है, कुंडली में पॉइंट आई है शिवरात्रि की, तो तुरंत हम अपने बुद्धि में चरणी चालू करें, चिंतन मनन चालू करें, वो शिवरात्रि और वास्तविक शिवरात्रि। भले हमको पता है हमने भाषण भी दी है शिवरात्रि में, वो नहीं, हम ये क्यों कर रहे हैं, मुरली पढ़ते समय पढ़ते पढ़ते ही ये चिंतन। जैसे ही कॉन्ट्रास्ट आया, कोई एक फेस्टिवल आया, तो संसार में वो क्या होता है, शिवरात्रि आया या किसी जानवर को हवन या बैल नंदी गंगा, तो संसार में गंगा का क्या महत्व है। थोड़ा सा आपको मुरली से बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मुरली से बाहर जाना पड़ेगा और थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। अगर कुछ आपके पास साहित्य है तो वहां से भी आपको वो इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक ही ढंग से एक ही तरह से मुरली कब तक सुना सकेंगे। सेम वो स्टूडेंट भी थक जाते हैं, वही वही बातें, और नेचुरल है कि एक ही बात, बाप आया है तुम्हें पावन बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तुम्हें सेवा भी करनी है, बाप है निष्काम सेवाधारी, बाप है पति पावन, काम महाशत्रु है, आदि मध्यंत दुख देता है, विनाश सामने खड़ा है, ये सारा सबका सुना हुआ है, इसमें नवीनता ऐसा कुछ नहीं आता। तो हमको क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट, ये अपनी सेल्फ स्टडी, पहले ही हम कॉन्ट्रास्ट कर दें। जैसे इसमें आया उसके पहले ही हम इस मुरली को पहले ही पढ़ लें, पढ़ना चालू करना है कब से, अगर कल वो मुरली सुनानी है हमको तो आज दिन भर में ही उसे दो तीन बार पढ़ लें, टाइम निकाल निकाल कर। और वो पढ़ना भी कैसा, एक साथ पूरी की पूरी नहीं पढ़ लेते, थोड़ा सा जैसे साकार में आया एक बार क्या है, जैसे कल के इसमें ये है होली नंस भवन है जो व्यर्थ को संबंध में परिवर्तन, इतना लाइन पढ़ लिया और हमने छोड़ दिया, अभी ऊंचा है सेवा जो कर रहे, करते करते चिंतन, क्या चिंतन, हंस, हंस क्या करता है, कहाँ रहता है, कितने प्रकार के हंस होते हैं, हंस का रंग क्या होता है, हंस क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ मिलते हैं, सबसे हंस अच्छे हंस कहाँ है भारत में, नॉलेज इंफॉर्मेशन, ये सारे आप चिंतन कर रहे हैं। नहीं पता तो एक दूसरे को फोन कर सकते हैं कि हंस के बारे में आपको क्या पता है, यहाँ नागौर में हंस कहाँ मिलते हैं क्या, ये इंफॉर्मेशन है, आप उसके बारे में थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हंस शब्द आया है, अब उसका कॉन्ट्रास्ट पावन ने ज्ञान के साथ किया है। कोई भी चीज को समझने के लिए कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। बाबा मुरलियों में कॉन्ट्रास्ट कैसे करते हैं, हमेशा कलयुग का कॉन्ट्रास्ट सतयुग का कॉन्ट्रास्ट कलयुग से करते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट है। तो मुरलियों में कितने कॉन्ट्रास्ट आए, आज की मुरली में सतयुग का कंपेरिजन इससे कलयुग से किया गया। दूसरा कॉन्ट्रास्ट था ज्ञान की भक्ति की कोई बात का कॉन्ट्रास्ट इधर किया गया, भक्ति में गुरुओं की शरण में जाते हैं, टिप्रिया ये टिप्पणी घिस गई बाबा कहते हैं, तो वो कॉन्ट्रास्ट और इधर कॉन्ट्रास्ट, तो उसमें हम सोच सकते हैं वो गुरु और ये गुरु, शिव बाबा भी गुरु है वो भी गुरु है, दोनों में क्या अंतर है, फाइव पॉइंट्स सिक्स पॉइंट निकाले और लिखे, वो लिखे वहीं लिख सकते हैं या पीछे जो जगह होती है कभी कभी आपने नोट्स में कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या है, भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट, लौकिक और अलौकिक का कॉन्ट्रास्ट, ज्ञान के ध्यान में कॉन्ट्रास्ट, देहभान देही अभिमान देह अभिमान, इसमें क्या कॉन्ट्रास्ट है। तो इस तरह से यदि आपको कोई आत्मा अपनी स्थिति से जाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। यह क्षमा करने से संसार में क्या होता है, पहले संसार का सोचो कि संसार में क्षमा के बारे में क्या क्या कहा हुआ है, किसने किसको क्षमा की थी। और अज्ञान में कॉन्ट्रास्ट, क्षमा इधर क्षमा उधर, तो ये हो गई फर्स्ट मेथड जो है कॉन्ट्रास्ट मेथड। अब दूसरी मेथड है एग्जाम्पल मेथड, दूसरी है एग्जाम्पल। बाबा ने सारे मुरली में क्या क्या उदाहरण दिए हैं, जैसे लास्ट संडे की मुरली में चले जाओ, उसमें बाबा ने इंद्रियों को कंपेयर किया था मकड़ी के जाल से, उसमें फंसते हैं तो मकड़ी के जाल, तो मकड़ी के जाल के साथ कंपेयर किया, मकड़ी छोटी जाल बड़ा, आंखें छोटी जाल बड़ा, उसमें फंसने के बाद रूहानी बेहोशी। अब संसार में व्यक्ति जब अनकॉन्शियस हो जाता है हॉस्पिटल तो क्या क्या होता है, इधर बेहोश हो जाता है तो क्या क्या होता है, ज्ञान में फंस जाता है इंद्रियों में। इसमें ये उदाहरण है, अभी हम उदाहरण मेथड देख रहे हैं, एक तो मकड़ी का उदाहरण, अभी यही साकार मुरली आपने देखी, जानवरों के कितने सारे उदाहरण बाबा ने दिए, पूरे मुरली में कितने जानवर आए, कभी कछुए का उदाहरण, कभी मकड़ी का उदाहरण, कभी पिछले संडे की मुरली में वो मधुमक्खी का उदाहरण दिया था, जैसे मधुमक्खी होती है हर एक के गुणों पर उसकी नजर जाती है, वैसे तुम्हें भी हर एक की विशेषता पर तुम्हारी नजर जानी चाहिए। तो बाबा ने उदाहरण कौन सा लिया, मक्खी का, मधुमक्खी का उदाहरण, हनी बी का उदाहरण, हंस का उदाहरण। तो कौन कौन से उदाहरण दिए, जैसे मुरलियों में अव्यक्त वाणियों में जैसे शब्द आया मतलब वो उदाहरण, जैसे शिव बाबा इस तन में निराकार है, इस तन में फंसता नहीं, ये उदाहरण है। लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली त्याग पर चली थी, बाबा ने कहा था देहभान का त्याग करो, उसमें एक ब्रह्मा का उदाहरण दिया था, जैसे ब्रह्मा ने इस शरीर को रत्न समझा, ये उदाहरण। तो सारी मुरलियों में कितने उदाहरण आते हैं, तो उसकी आप पहले से लिस्ट एक बना के रखो, आपकी जो स्टडी होगी यही लिख दो, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, ये इस तरह से। फिर आप मुरली पूरी हो जाने के बाद आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि इस मुरली में क्या क्या एग्जाम्पल बाबा ने दिए, जैसे ये वाली मुरली में थोड़े कम उदाहरण है, परंतु हर मुरली में बहुत सारे अव्यक्त वाणी में इतने सारे उदाहरण होते हैं, इतने सारे उदाहरण होते हैं, हर चीज के लिए एक उदाहरण देते हो, हर चीज में जैसे संसार में होता है वैसे ही, जैसे वैसे। तो जैसे शब्द जहां आया मतलब वो उदाहरण। तो आप पूरी मुरली से कभी कभी तो आपको अगर मुरली रिवाइज करानी है, जैसे मुरली पूरी होगी पढ़ के उसके बाद में आपने पहले से सोच के रखे थे ये पांच उदाहरण मुरली में आए हैं, तो आप मुरली पूरी होने के बाद जो रिवाइज कराते हो वो सारे स्टूडेंट से इस तरह से रिवाइज करो कि आज की मुरली में बाबा ने पांच उदाहरण दिए। पहला उदाहरण दिया कमल की जीवन कमल समान रहना, दूसरा उदाहरण दिया मधुमक्खी, तीसरा उदाहरण दिया मकड़ी, चौथा उदाहरण दिया मच्छर, अभी भी मुरलियों में आया था फटे पुराने बर्तन, उसमें क्या आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं, और मच्छर क्या करते हैं, काटते हैं, तो ये मच्छर का उदाहरण दिया। तो मुरली में एग्जाम्पल कितने हैं, तो आपको कम से कम पांच एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पर आप खाली कभी एक मेथड लो, कभी दूसरी मेथड लो, कभी आप कॉन्ट्रास्ट मेथड ले लो कि जिसमें कंपैरिजन क्या क्या है, एक वो कभी यही लक्ष्य से पढ़ो मुरली कि इसमें एग्जाम्पल जो जो होगा ना वो मुझे चेक करके रखना, और ताकि मैं जब क्लास में बताऊं तो फिर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो पूरी वैसे के वैसे मुरली पढ़ने में स्टूडेंट्स को नींद आती है, और वो वास्तविक है हम भी बैठ जाए और कोई हमको, हमने सुना है एक सेंटर पर एक बैच तीन घंटे तक मुरली चलाती है, वो स्टूडेंट मेरे पास आया हम क्या करें, क्या करें आप बताओ, ऐसे मुझे बोल रहे थे, हम कैसे रहे इतना देर, वो तो अत्याचार जैसे है, तीन घंटे मुरली चलती है। वो देखो मुरली पढ़ लेना है, परंतु ऐसा उसमें करना है उनका इंटरेस्ट जागृत हो जाए इसमें मुरली। तो सेकंड मेथड है एग्जाम्पल मेथड। तीसरी मेथड है आंसर चर्निंग मेथड। आंसर चर्निंग मेथड मतलब आप प्रश्न पढ़ लो, आंसर चर्निंग, चर्न मतलब मनन करना, मंथन करना, आंसर आप ये प्रश्न पूछो उत्तर नहीं बताना, मुरली में प्रश्न पूछना उत्तर नहीं बताना, फिर सीधा मुरली पूरी करो। हाँ तो क्या करना है, ये जो उत्तर जो है ना इसके उनको आपको 10 उत्तर पूछने, इधर का उत्तर नहीं आना चाहिए, ये वाला उत्तर आपको नहीं चाहिए। तो पढ़ने वाला या नहीं पढ़ने वालों का कोई लेना देना नहीं है, ये पहले आप खुद चिंतन करना पड़ेगा, आप खुद ही उस उत्तर को देखना नहीं है। ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है, अब आपने प्रश्न पढ़ लिया रख दो इसको पास, आप अपनी विधि निकालो, कम से कम 5, कम से कम 7, अपने चिंतन से अब पूछो कि विधि बताओ। अभी 10 लोग हैं जो पढ़ के आए, अगर उन्होंने वो उत्तर दिए रिजेक्ट, वो आपको नहीं चाहिए, वो मुरली में दूसरे बताओ, चिंतन हो उनका। हाँ यही तो हम वही तो कह रहे हैं, पहले आपको खुद चिंतन करना है। आप क्या करो, दूसरे दिन की जो मुरली है उसका आज 10 बजे 11 बजे खाली प्रश्न पढ़ लो, बस प्रश्न पढ़ लो और उत्तर नहीं देखना, और सारे दिन भर सोचते रहो उसके बारे में, कुछ कुछ करते करते, या कभी फोन करके भी पूछ सकते हैं या किसी को भी पूछ सकते हैं। जैसे ये प्रश्न जो है ज्ञान में आता है नशा चढ़ता है उसको स्थायी कैसे रखा जाए, तो इसके साथ दूसरा प्रश्न जुड़ा है कि ज्ञान में आने के बाद नशा चढ़ता है वो खत्म क्यों हो जाता है। आप प्रश्न को ही बदल दो, प्रश्न ये है पर उत्तर आप प्रश्न ऐसा पूछेंगे कि पहले जो इतना नशा था वो अब क्यों नहीं है, इसको इस तरह से पहले आपको खुद उसका थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, और हम धीरे धीरे चिंतन की ओर जा रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना है, और उसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करते करते ही करना है, सब कुछ करते करते। तो इसको कहा जाता है आंसर चर्निंग मेथड। थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन मेथड। इस मुरली से कम आप खुद पर्सनली 10 प्रश्न बनाओ, जैसे क्विज है आप प्रश्न बना दो इसमें से, जैसे ओम शांति यह गीत बहुत अच्छा है क्योंकि दुख तो सारी दुनिया, दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से सुख धने में, इस समय सारी दुनिया दुखी है। प्रश्न बनाया इस समय सारी दुनिया दुखी क्यों है, 10 कारण, बस इतने में ही हमने प्रश्न बना लिया, इस समय संसार दुखी क्यों है। ये पहले हम चिंतन करें, पहले तो हम कह रहे हैं सब अपने लिए है, यहां अभी आप अपनी उन्नति के लिए चिंतन करना है कि दुख आया शब्द बस आगे बढ़ना ही नहीं है, इसको छोड़ दो आप, अब उसके ऊपर दुख के कारण क्या है, आधुनिकता वगैरह 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 जी। हाँ निकालते थे ये तो बहुत बार में बने, प्रश्न वगैरह तो बहुत बार में बने। हाँ तो अभी अब इस नहीं, अभी हमको ये प्रश्न तो छोड़ ही दो, इस मुरली से यहां से लेकर यहां तक जो मुरली है उससे आपको प्रश्न बनाने हैं, और एक काम और कर सकते हैं, प्रश्न बना के आप अपनी क्लास में मुरली पूरी होने के बाद में उनको होमवर्क दे दो 5 प्रश्न, और जो अपनी अपनी डायरी में कल होमवर्क करके लिख के लाए। पहला प्रश्न, संसार में दुख के कारण क्या है, नाम सहित दे दो, ये बहन कल इस प्रश्न को उत्तर लिख के लाएंगे तो वो होमवर्क करेंगे, उससे उनकी बुद्धि चलने लगेगी। किसी भाई को प्रश्न दे दो कि बाबा ने ये जो कहा है, जैसे कोई भी एक महावाक्य ले लो, तुम लिख सकते हो कि इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है, आकर समझो एक सेकंड में कौन कौन सी सेवा होती है, कम से कम 25 सेवाएं लिख के आओ, एक सेकंड में होने वाली सेवा है, चिंतन का विषय है, एक सेकंड में सेवा क्या क्या हो सकता है, एक सेकंड में ये सोचना पड़ेगा इसके लिए, एक सेकंड में दृष्टि, एक सेकंड में वाइब्रेशंस, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें, या 1 मिनट में होने वाली सेवाएं कौन सी कौन सी, या 5 मिनट में होने वाली सेवाएं कौन कौन सी, ये चिंतन है, क्योंकि ऐसा प्रश्न मिलने के बाद में बुद्धि चलने लगेगी, कि उसको सोचना है, इस भाई को ये उत्तर ये दे दो, या फिर बाप आने सेकंड में क्या क्या होगा इसकी लिस्ट बना के दो पॉइंट्स, उनको होमवर्क दे देते हैं, कोई ना कोई करके लाएगा और जिनको इंटरेस्ट है उनको दे देगा। तो ये हो गया क्वेश्चन मेथड, ठीक है। अगला है टॉपिक मेथड, हर मुरली से चिंतन के लिए टॉपिक निकालना है। जैसे इस मुरली से आप क्या टॉपिक निकालेंगे, जैसे आज के अवसर तो मानी तो इस मुरली से टॉपिक है घृणा से क्या क्या नुकसान होते हैं, टॉपिक है। जैसे आपको इसके ऊपर जाके भाषण करना है, आपको किसी कंपनी में बुलाया जाए, हाउ टू फिनिश हेट्रेड, हाउ टू ब्रिंग लव इन रिलेशनशिप, ये टॉपिक आपको है। तो इसमें से आपको टॉपिक क्रिएट करने हैं, कम से कम 10 टॉपिक। जैसे एक घृणा एक निकला, दूसरा टॉपिक निकलेगा कि चाहिए कि माया, टॉपिक का नाम चाहिए कि माया। इसको आप विस्तार कर सकते हो कि चाहिए से क्या क्या होता है, जो बोला ना चाहिए कि चाह, तो चाहिए कि चाह या चाहिए कि माया, ये टॉपिक है। आपने इसमें से टॉपिक, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है इस मुरली के ऊपर और आपको ये काम दिया गया है टॉपिक निकाल दूसरों को देने के लिए, तो आप किस अप्रोच से उसको देखेंगे, आप फटाफट देखेंगे कौन सा टॉपिक अच्छा है, हाँ, और वो टॉपिक अच्छा होना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव। तो वो इस तरह से आप निकालें, जैसे चाहिए कि चाह एक टॉपिक निकाला, दूसरा आपने टॉपिक निकाला घृणा के ऊपर, तीसरा आपने टॉपिक निकाला स्वार्थ, स्वार्थ के बंधन या स्वार्थ की बेड़िया, कुछ भी हो सकता है, इसमें स्वार्थ आया ना। तो इस तरह से आपको हर मुरली से टॉपिक निकालना है और आप अपने स्टूडेंट्स को टॉपिक दे दो कि एक माता ये टॉपिक के ऊपर चिंतन करें, आप इस पर चिंतन करो, आप उस पर चिंतन करो, हर एक को कम से कम 3-4 लोगों को टॉपिक दे दो, और जरूरी नहीं कि वो आके दिखाए, बस अपना करो चिंतन, नहीं तो उसके ये डर के बारे में आना बंद कर देंगे। ये भी स्टूडेंट्स को ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, उनको बस आ बैठे लिखे और चलो, ये ना तो ठीक लगता है, परंतु जो ज्यादा इंटरेस्टेड है ज्ञान में, जिनको समझना है, उसके लिए आप कर सकते हो टॉपिक्स मुरली से निकालना और उसके ऊपर चिंतन करना। तो दिस इज नॉन एज टॉपिक मेथड। अगला है ड्रिल मेथड। अभी ड्रिल अर्थात मुरली को आप ड्रिल में परिवर्तन कर दो योग के प्रयोग में, जैसे जैसे ये मास्टर शमा का साधन, इसकी आप ड्रिल बनवा दो, रोज एक नई ड्रिल बनाओ, वही ड्रिल नहीं, और वो स्टूडेंट्स को भी सिखाओ या कराओ बीच बीच में। जैसे कोई भी एक पॉइंट, जैसे मास्टर शमा का साधन रखा है, तो इसकी हम एक छोटी सी ड्रिल लिखे और वो बनाए और वो उनको कराए या सीखाए, एक तो ये हो सकता है। दूसरा कोई भी ड्रिल नहीं से भी, पूरी मुरली से ड्रिल निकालनी है या बनानी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हमने तो अभी बीच में हमारे जो ग्रुप में ये पूरी की पूरी अव्यक्त वाणी पर कंप्लीट एक ड्रिल, जिसमें सारे यहाँ के शब्द होते थे सब आ जाए, बहुत सुंदर अलग अलग ग्रुपों ने बनाई है ड्रिल, पर उसमें काफी काम बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार मुरली पढ़नी पड़ती है, अनगिनत बार, एक बार पढ़ने से नहीं होता है, अनगिनत बार, ताकि वो पता चले कहाँ से कहाँ जोड़े, कैसे जोड़े, बहुत सारी चीजें उसमें। तो इट इज नोन एज ड्रिल मेथड। उसके बाद में है वर्ड मेथड। वर्ड एक शब्द ले लो बस और उसकी इतनी गहराई में चले जाओ, जैसे महादानी ये शब्द आया, तो पहले तो दान के विषय में संसार में क्या क्या नॉलेज है वो सारा हासिल हुआ, दान के प्रकार कितने हैं, दान कौन कौन करता है, हर एक धर्म में दान के क्या महत्व है, अच्छा भारतीय संस्कृति में कौन महादानी हुए हैं, याद करो करने याद आएगा, अलग अलग लोग याद आएंगे हमको, कुछ तो हमारी बुद्धि काम करना चालू करेगी। तो ये है वर्ड, एक वर्ड ले लिया और उसका विस्तार किया। दूसरी मेथड है सेंटेंस मेथड। सेंटेंस मेथड में क्या करना है, एक महावाक्य ले लेना और उसका विस्तार करना, जैसे घृणा का बीज है स्वार्थ का रणतु चाहिए, ये पूरा एक महावाक्य है, इस पूरे महावाक्य को विस्तार करना, सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस, कोई भी एक ले लिया यहाँ पर, जैसे स्लोगन ले लिया, सर्व को स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगता है जो सदा खुशहाल रहते हैं, तो एक सेंटेंस ले लिया और उसका विस्तार या उसकी गहराई में या उसके और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, या बाबा ने उसके बारे में इसके पहले उंगलियों में क्या क्या कहा, ये एक मेथड है। अगली मेथड है आंसर आस्किंग क्वेश्चन मेथड, मतलब दूसरों आस्किंग मेथड, दूसरों को पूछना। जैसे आपको कोई समस्या है, कोई शब्द समझ में नहीं आया, उर्दू में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, बाप तुम्हें चौक चीनी खिलाते हैं, ऐसे नए नए शब्द आते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन आप कर सकते हैं। तो वो है आस्किंग मेथड, एक दूसरे को पूछना, या ये भी पूछना कि आज जो बाजार में ये पॉइंट है इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ हो सकता है। तो दिस इज नोन एज आस्किंग मेथड, एक दूसरे को पूछना, ये एक मेथड का नाम है। अगला है जो सबको पता है फोर सब्जेक्ट मेथड, मुरली को चार भागों में विभाजित कर देना, ज्ञान की पॉइंट कौन सी है, धारणा की कौन सी है, योग की कौन सी है, सेवा की कौन सी है, चार भागों में उसको विभाजित कर देना, इसको कहते हैं फोर सब्जेक्ट मेथड। एक दूसरी मेथड है फाइव एज मेथड, पांच युग, सदियों के बारे में क्या कहा, द्वापर के बारे में क्या कहा, संगम के बारे में क्या कहा, अलग अलग कर दिया उसका, तो अलग अलग मेथड कि आज संगम के बारे में क्या क्या कहा। अब मुरली शुरू होने से पहले ही आप खाली वही पॉइंट में रखो कि मुझे संगम युग की जितनी पॉइंट आएगी वो याद रखूंगी, या अलग करनी, तो ये होगी फोर सब्जेक्ट मेथड। फिर है एक रिलेशनशिप मेथड, ये जो रिलेशनशिप मेथड है, आज बाबा ने कौन कौन से संबंधों को याद किया, एक तो बाप का संबंध तो रहता ही, पर कभी कभी कुछ और भी नया संबंध उसमें बाबा कहते हैं, नई बात आ जाती है, तो ये नया संबंध था, तो इसको कहेंगे रिलेशनशिप मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद में है एक्सट्रैक्टिंग न्यू पॉइंट मेथड, मतलब आज की मूवी में नई बात कौन सी थी, न्यू पॉइंट, एक्सट्रैक्टिंग न्यू पॉइंट, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, एक्सट्रैक्टिंग न्यू पॉइंट, सारी मुरली में नई पॉइंट कौन सी आई जो कि मैंने आज तक सुनी नहीं, जो एकदम नई है। अब इतने समय से मुरली सुन रही है और हो सकता है पूरी चार पेज की मुरली में एक या दो ही होगी जो नई होगी, और जो नई होगी उसको पकड़ लेना, अलग से लिख लेना, एकदम नई है जो आपने कभी सुनी नहीं आज तक, इतनी नई है, भले इतनी बार वो आ गई हो पर हमारा ध्यान नहीं गया उस पॉइंट की तरफ, तो वो है न्यू पॉइंट मेथड, एक्सट्रैक्टिंग न्यू पॉइंट मेथड। दूसरी एक मेथड है सेल्फ चेकिंग मेथड, सेल्फ चेकिंग में प्रश्न कौन कितने आए, जैसे स्वयं को चेक करो, मुझे में आता है खुद को चेकिंग वाली पॉइंट आते कितना समय याद किया, तो जितने प्रश्न आए हैं उसको अलग से छांट के आप लिख लो। कभी कभी साकार मुरली पढ़ते समय आप खुद ने पढ़ी साकार मुरली, उसमें से बीच में मुरली के तीन चार प्रश्न आए, स्वयं को देखो, भूखा देख ले प्राणी, तो ऐसे चार प्रश्न निकाल लिए और याद करो उसको, और मुरली पूरी होने के बाद फिर पूछो कि बाबा ने आज ये चार प्रश्न पूछे पूरी मुरली, इन चार प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है, उसके ऊपर खुद की चेकिंग करनी है। जैसे मैं संपूर्ण पवित्र कितना बना हूं, मेरे व्यर्थ संकल्प कितने आते हैं, बीच में आएगा कोई भी ऐसा, इस तरह के कोई भी प्रश्न आ सकते हैं, तो वो सेल्फ चेकिंग वाली कौन कौन सी पॉइंट है वो अलग से निकाल लें, सेल्फ चेकिंग मेथड, ये एक मेथड है। फिर है स्टोरी मेथड, आज हमारे किस किस को याद किया, अजाविन की कहानी, तो तिजली की कहानी, तीन चार कहानियां तो होगी साकार मुर्गिया में तो रहता ही, स्टोरी मेथड, तो आप इसको मुरली पूरी हो गई, फिर आप ये कह सकते हो, कभी कंक्लूड कर सकते हो, देखो आज बाबा ने तीन कहानियां सुनाई मुरली, पहली जो कहानी सुनी उससे हमने क्या सीखा, दूसरी कहानी है उससे हमने क्या सीखा, तीसरी कहानी है उससे हमने क्या सीखा, तो वो तो आपको लगभग पता ही होगा, जो मुरलियों में छोटी छोटी कहानियां आती है उसकी किताब भी बनी होती है, कई सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, वो तो सुना था बस साथ में उसका अर्थ क्या है और उससे करना क्या है वो भी बताना है, तो दिस इज नोन एज स्टोरी मेथड। फिर उसके बाद में है कितने हुए 15, एक लास्ट ले लेते हैं फिर इसको पूरा करते हैं। मेमोराइजेशन मेथड, मेमोराइजेशन मतलब याद कर लेना, कई लोग कहते हैं आपको बस याद ही नहीं रहता क्या है, पर आपको आदत डालनी पड़ेगी इसकी थोड़ी थोड़ी, कुछ कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं, और याद करने की विधि क्या है, जैसे छोटा बच्चा है ठीक है, वो उसको कहो कि पढ़ाई करो मैथमेटिक्स की, वो कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, मेरी बुद्धि बहुत कमजोर है, उसको टीवी के सामने बिठाओ, सारा याद है उसको कितने कितने पिछले साल रन बनाए। क्यों? इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट है उसको। क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो याद है। एक तो ये विधि है याद रखने, दूसरी है रिपीटेशन। कितनी बार हम उसको रिपीट करते हैं, जैसे अब ये एक स्लोक है, ठीक है, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। एक बार तो पढ़ लिया हम उसको छोड़ देते, ऐसा नहीं। इसको हम कुछ कुछ पॉइंट आते हैं उसको याद करते हैं, याद करने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा उसको। एक बार पढ़ लिया और वो बार बार पढ़ना इंटरवल होना चाहिए बीच में, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा दूसरी बार पढ़ा तीसरी बार पढ़ा छोड़े, तुरंत नहीं। एक बार पढ़ लिया छोड़ दो, अब उसके बाद याद करने रिवाइज करने की कोशिश करो कि आज का मुंबई में स्लोगन क्या था। आपने याद किया, सुबह पढ़ ली थी मुंबई, आपने ही सुनाई थी, पर दोपहर में 12 बजे तक आपको लगा मैं कुछ भी हाथ में नहीं हूं, याद मुझे ही नहीं, हमने ही सुनाई और आपको याद नहीं, तो फिर देख लेना, फिर रख दिया। फिर 5 बजे फिर एक बार याद करो क्या था, तो थोड़ा सा याद आएगा होली मन से जैसा कुछ था, पर पूरा नहीं पता क्या था। तो फिर से एक बार देख लिया, याद देख लिया, हाँ होली हम सब व्यर्थ को समर, तो व्यर्थ समर की बात थी। होली हम सभी हमेशा जोड़ते बाबा पत्थर और ये मोती के साथ, पर आज देखो नई बात है, व्यर्थ और समर्थ के साथ जोड़ो, तो एकदम बुद्धि में प्रकाश आया कि ये तो नई पॉइंट है। सुबह तो लगा जब सुना रहे थे स्टूडेंट को तो ये तो बस वैसे सुना दिया, पर आज 2-3 बार पढ़ने के बाद पता चला ये एकदम नहीं है। हमेशा जो बोलते हैं बाबा उससे ये नहीं है, व्यर्थ समर्थ के साथ जोड़ रहे, हमेशा वो पत्थर और उसके साथ जल नहीं है, निर्शीर के साथ होता है दूध और पानी, और ये नहीं हो गई तो उसमें आप पॉइंट बना सकते हैं। अभी हंस अर्थात एक तो पत्थर और कंकड़ और मोती, दूसरा पानी और दूध, तीसरा व्यर्थ समर्थ, 3 पॉइंट हो गए, 3 हमको आ गए मतलब हमारे से। तो इसको कहते हैं कुछ कुछ बाबा के महावाक्य बहुत पावरफुल होते हैं। कल की साकार बोली में एक जगह था, बाप उन बच्चों को याद करता है जो बाप को याद करते हैं। ये याद करने जैसी पॉइंट है जिसको आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं, और केवल यूज करने के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसी महावाक्य जो होते हैं ना हमको शक्ति देते हैं, शक्ति बन जाते हैं हमारे लिए। तो कितनी होगी, 16, ठीक है, 16 बहुत होगी। फिर से एक बार बताओ जो लिखा आपने, पहला कॉन्ट्रास्ट, तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे इसमें क्या, भक्ति में क्या, ज्ञान में क्या, लौकिक में क्या, लौकिक में क्या, ज्ञान के ज्ञान में क्या क्या कॉन्ट्रास्ट है वो भी। एक दूसरा एग्जाम्पल, बाबा ने आज की पूंजी में किन किन प्राणियों के उदाहरण दिए, झाड़ के उदाहरण दिए, किस चीज के उदाहरण दिए, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा आंसर जर्नी, प्रश्न देख लेना आंसर ढूंढना है, उसको आप खुद चिंतन करो। जैसे कल मुरली जो है ना, भले आप पढ़ने वाले हो संधि पर बैठकर या नहीं वो कोई बात ही नहीं, आप खाली प्रश्न देख लो, उत्तर सारे दिन जो मनन करते रहे। चौथा क्वेश्चन मेथड, मुरली से क्वेश्चन बना, कभी कभी आप ये काम किसी को स्टूडेंट को भी दे सकते हो कि इस मुरली से आपको 10 प्रश्न बनाने, और फिर वो प्रश्न लेके आप स्टूडेंट को पूछो तो उसको भी खुशी होगी कि मेरे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा होता है थोड़ा, देखो स्टूडेंट जो है ना उनको पालना के लिए ये बहुत सारी चीजें जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक, कोई भी टॉपिक निकाल लो और उसके ऊपर आप या दूसरी बहन को फोन करके दे सकते हो। आप ऐसे 5 टॉपिक निकाल लो और दूसरी बहन को फोन करके बोलो कि आपको ये 5 टॉपिक के ऊपर चिंतन करना है, खुशहाल जीवन इसके ऊपर चिंतन, जैसे आपको किसी कंपनी में जाके भाषण देना है खुशहाल जीवन, और वो कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये पहले से ये प्रैक्टिस है आपकी उसके लिए। ट्रेनिंग, नेक्स्ट ड्रिल, उर्ली से ड्रिल बना देना। नेक्स्ट वर्ड, एक वर्ड ले लेना और उसका विस्तार करना। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेना, उसका विस्तार करना। नेक्स्ट आस्किंग, एक दूसरे से पूछना। नेक्स्ट फोर सब्जेक्ट, उर्ली को 4 में डिवाइड करना। नेक्स्ट 5 एज, 5वें युगों के बारे में क्या क्या कहा। नेक्स्ट रिलेशनशिप, संबंध कौन कौन से थे। नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिंग न्यू पॉइंट्स, नए पॉइंट्स क्या क्या थे। नेक्स्ट सेल्फ चेकिंग। नेक्स्ट स्टोरी, ओके मेमोराइजेशन क्लास कुछ कुछ परसेंट याद
अच्छा ऑप्शन।